श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 श्लोक क्रमांक 21 से आगे। अमीहि त्वाम सुर संगा विशन्ति केचिद् भीतः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्वस्तीत युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वाम स्तुतभि पुष्कलाभि। ये अर्जुन की प्रार्थनाएं कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। अद्भुत बात है, भगवान को देव देवादेव कहते हैं, यानी देवताओं के भी देवता। जिस प्रकार से यहाँ के लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए देवताओं के पास जाते हैं, तो वो देवता अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए भगवान के पास जाते हैं, जिसको अर्जुन यहाँ देख रहे हैं। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि विराट पुरुष का वो दर्शन कर रहे हैं और वो उनको भी बहुत भयानक लग रहा है, अर्थात देवताओं को भी। महर्षियों तथा सिद्धों के समूह कल्याण हो कहकर वैदिक स्त्रोतों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। इसको मंगलाचरण बोला जाता है या इसको स्तुति वचन कहा जाता है। तो इसके द्वारा जो महर्षि लोग हैं वो ऐसे शब्दों को बोलते हैं जिससे कि मंगल होता है। समस्त लोगों के देवता विश्व रूप की भयानकता तथा प्रदीप्त तेज से इतने भयभीत थे कि वे रक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। यह अद्भुत बात है कि सभी देवता विश्व रूप में ही स्थित हैं, लेकिन वह भी हमेशा देख नहीं पाते। जब भगवान ने अर्जुन की प्रार्थना से विश्व रूप को प्रकट किया और अन्य देवताओं को भी शक्ति दी कि वो देख सकें, तभी वो उसको देख पाए, और तब वो भगवान की शक्ति को देख करके भयभीत हो रहे थे। रुद्रादित्यो वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनौ मर्त्वचोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ति त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। बिल्कुल समझाना नहीं है, सारे देवता भगवान को देख रहे हैं। रूपम महते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुर पादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोकः प्रविथातस्तथाहम्। हे महाबाहु, आपने इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित हैं और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। तो आप ये देख रहे हैं कि अर्जुन का प्रेम यहाँ किंचित मात्र में शिथिल हो गया है। द्वारका के पार्षद हैं और जब द्वारका के पार्षदों को भगवान का ऐश्वर्य प्रदर्शित होता है भगवान के द्वारा, तो उनका प्रेम शिथिल हो जाता है। वो थोड़ा घबरा रहे हैं। नभास्पृशम दीप्तमनेक वर्णम व्यत्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रवितथान्तरात्मा धृतिम नविन्दामि शमम च विष्णु। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, ना मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। इस संबंध में श्रील प्रभुपाद भी बड़ा सुंदर बोलते हैं। वो कहते हैं कि भगवान विराट रूप में क्यों नहीं आते। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण अपना विराट रूप क्यों नहीं दिखाते। तो ये ध्यान देना चाहिए कि भगवान के विग्रह में शास्त्रों के अनुसार भगवान के जितने भी रूप हैं, स्वयं रूप कृष्णा और उनके विराट रूप, सब कुछ निहित होता है। लेकिन भगवान इस प्रकार से छोटे रूप में आते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें। अगर भगवान विराट रूप में आए तो हम उनकी कैसे सेवा करेंगे, कैसे कपड़ा पहनाएंगे, कैसे खिलाएंगे, बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए भगवान ऐसे कन्वीनियंट रूप में, अपने विग्रह के रूप में आते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सकें और इससे हम लाभान्वित हो सकें। दंष्ट्रा काला कराला निचते मुखानी दृष्टैव काला नलसन निभानी दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपको, आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। भगवान कृष्ण अभी रथ पर बैठे थे और अकस्मात ने अपना विराट रूप दिखाया तो अर्जुन भयभीत हो गए। अमी चत्वाम धृष्टराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहेवाव निपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूत पुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योद मुख्यै वक्त्राणिते त्वरमाणा विशन्ति द्रष्टा करालानि भयानकानि केचिद् विलग्ना दशनान्तरेषु संद्रश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायक राजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण एवं हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के शिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चूर्णित हुआ देख रहा हूं। भगवान अपने काल स्वरूप को दिखा रहे हैं जो सभी का क्षय करता है। ये अद्भुत बात है कि ये जितने लोग भी राजा लोग थे भीष्म द्रोण कर्ण इत्यादि ये अभी मरे नहीं थे, लेकिन ये भविष्य काल की घटना देख रहे हैं जिसमें इन सब का मरना निश्चित था भगवान के द्वारा। तात्पर्य, एक पिछले श्लोक में भगवान ने अर्जुन को वचन दिया था कि यदि वह कुछ देखने का इच्छुक हो तो वे इसे दिखा सकते हैं। अब अर्जुन देख रहा है कि विपक्ष के नेता भीष्म द्रोण कर्ण तथा धृतराष्ट्र के सारे पुत्र तथा उनके सैनिक और अर्जुन के भी सैनिक विनष्ट हो रहे हैं। यह इसका संकेत है कि कुरुक्षेत्र में एकत्र समस्त व्यक्तियों की मृत्यु के बाद अर्जुन विजयी होगा। यहाँ यह भी उल्लेख है कि भीष्म भी जिन्हें अजय माना जाता है ध्वस्त हो जाएंगे। यही गति कर्ण की होनी है। न केवल विपक्ष के भीष्म जैसे महान योद्धा विनष्ट हो जाएंगे अपितु अर्जुन के पक्ष वाले कुछ महान योद्धा भी नष्ट होंगे। भगवान ने इस बात की वचन माता कुंती को दिया था कि तुम्हारे 5 पुत्रों के अलावा सभी को मृत्यु प्राप्त होगी इस महाभारत युद्ध में। एक इंटरेस्टिंग बात है, चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला था पृथ्वी ते आछे यद नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवे मोरे नाम। वही कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आ रहे हैं। और जिस प्रकार से भगवान कृष्ण यहाँ दिखा रहे हैं कि युद्ध का निर्णय तो हो चुका है, जिनको मारा जाना है वो पहले ही मारे जा चुके हैं, केवल अर्जुन को भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध करना है और यश लाभ प्राप्त करना है। उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने पहले ही बोल के रखा है कि पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार होगा, भगवान की भक्ति होगी। तो यानी जिनको भक्त बनना है, कौन बनना है, क्या होगा, वो पहले से निश्चित है। तो आप कहेंगे फिर हमें प्रयास करने की क्या जरूरत है? हम प्रयास करें ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो, हमारी भक्ति बढ़े। अन्यथा हम प्रयास करें या ना करें, महाप्रभु की इच्छा है, महाप्रभु की वाणी है, वो सत्य संकल्प है, वो तो प्रचारित होके ही रहेगी। जैसे गंगा जी तो बहेंगी ही और बही रही हैं और लोग का उद्धार कर ही रही हैं, हमारा कर्तव्य ये नहीं है कि उसमें हम मोटर लगाएं। हमें गंगा जी को के भाव को आगे बढ़ाने के लिए मोटर लगाने की जरूरत नहीं है, बल्कि गंगा जी में स्वयं स्नान करना है और दूसरों को बोलना है कि वो भी आकर के स्नान करें। उसी प्रकार से भगवान चैतन्य महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन माँ गंगा की तरह है, जो कितने ही बद्ध जीवों का, पतित जीवों का उद्धार कर रहा है। तो जो कोई भी इस मूवमेंट के, संकीर्तन मूवमेंट के संपर्क में आएगा उसका शुद्धिकरण आवश्यक है। तो इसलिए हम किसी को शुद्ध करने में सक्षम नहीं है, लेकिन हमें भगवान के निमित्त बनना है, दूसरों को हरि नाम दे करके, हरि कथा दे करके स्वयं भी शुद्ध हों और दूसरों को भी शुद्ध करें। जैसे देखिए, मैं इस गीता के प्रवचन को बोल रहा हूँ तो अब कौन सुनता है और कौन नहीं सुनता इस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, और सुनने के बाद उसको कितनी प्रेरणा मिलती है इस पर भी कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करने के लिए, पूर्ववर्ती आचार्यों को प्रसन्न करने के लिए मैं उनके वचनों को रिपीट करता हूँ तो उससे मेरा शुद्धिकरण होता है। तो यानी कि उदाहरण आप समझ गए होंगे, मतलब मैं गंगा जी में स्नान करने जा रहा हूँ और आप लोगों को, दूसरों को भी बोल रहा हूँ कि आप करें, अब करना नहीं करना वो आप लोगों के ऊपर है, अन्य लोगों के ऊपर है। यथा नदीनां बहवो अम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगे समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये तो आप समझ रहे हैं, इसमें कुछ समझाना नहीं है कि जैसे नदियां समुद्र में लगातार गिरती रहती हैं और पूरा विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार से ये महान महान योद्धा कितना भी महान हो, भगवान के मुख में, विराट पुरुष के मुख में प्रवेश कर रहे हैं और हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जा रहा है उनका शरीर। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रविष्ट होते देख रहा हूं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। अच्छा उदाहरण है क्योंकि महाभारत में भगवान की कृपा से, भगवान की व्यवस्था से बहुत सारे राजा इकट्ठे हुए थे अपनी ही मृत्यु को प्राप्त को वर्ण करने के लिए, और इस बात को भगवान दिखा रहे हैं कैसे ये लोग पहले से निश्चित हो चुका है कि ये लोग मरेंगे। लेली हसे ग्रसमान समंतान समंतान लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद भी तेजो भिरापूर्य जगत समग्रम भासस्तवो ग्रह प्रतपन्ते विष्णु। हे विष्णु, तो आप कहेंगे अद्भुत बात है कि तो भगवान कृष्ण है, ये विष्णु कैसे हैं? तो ये तो हमने कई बार चर्चा कर चुके हैं कि भगवान विष्णु कृष्ण के ही स्वांश हैं, उनके अवतार हैं, इसलिए इनको विष्णु कह रहे हैं। सर्वव्यापी एक और अर्थ होता है, विष्णु का अर्थ होता है सर्वव्यापी। तो अर्जुन यहाँ देख रहे हैं किस प्रकार से भगवान कृष्ण पूरे जगत में व्याप्त हैं, इस कारण से उनको विष्णु शब्द से वो संबोधित कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल झुलसाती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो ये आपको याद होगा कि विराट रूप कई सूर्यों के समान तेज वाला था, इसी बात को बोल रहे हैं। आख्या ही में को भगवान उग्र रूपो नमस्तुते देव वर प्रसीद विज्ञात में चामि भवंत माध्यम नहीं प्रजानामि तव प्रवृत्तिम। हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, कृपा करके मुझ पर प्रसन्न हो। आप आदि भगवान हैं, मैं आपको जानना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ कि आपका प्रयोजन क्या है। अर्थात भगवान क्यों इस प्रकार से सभी ऋषि राजाओं को मारने के लिए आए हुए हैं, इस बात का प्रयोजन अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं। अब इसके बाद भगवान का उत्तर होगा, उसकी चर्चा हम कल करेंगे।